एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ये किताब अमेरिकी इतिहास के एक ऐसे दौर को समझने में मदद करती है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला।
बिल्कुल। किताब का नाम है द रीगन रेवोल्यूशन और लेखक हैं गिल ट्रॉय।
और ये दौर था रोनल्ड रीगन की अध्यक्षता का, जो सिर्फ 8 साल का एक कार्यकाल नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अमेरिकी राजनीति, वहां के समाज, अर्थव्यवस्था, यहां तक के दुनिया को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव था।
सही का। और आज भी अमेरिका में जो बहसें चलती हैं या जिस तरह की नीतियां हम देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं रीगन के उसी दौर में मिलती हैं।
हाँ, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये रीगन क्रांति, जैसा कि किताब कहती है, आखिर थी क्या और रीगन ने खुद को किस भूमिका में देखा, उनके लक्ष्य क्या थे।
बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, गिल ट्रॉय। कौन है ये और इस विषय पर इनकी पकड़ इतनी खास क्यों मानी जाती है?
हाँ, बताइए।
तो गिल ट्रॉय वो कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं।
अच्छा, कनाडा के।
हाँ, और उन्होंने हार्वर्ड से अमेरिकी इतिहास में पीएचडी की है। उनकी खासियत है, जो आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं, उनका पॉलिटिकल कल्चर क्या है, और कैसे राजनीति और समाज एक दूसरे पर असर डालते हैं, इस सब पर उनकी गहरी पकड़ है।
ये तो दिलचस्प है कि एक कनाडाई इतिहासकार अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर लिख रहे हैं। क्या इससे उनके देखने के तरीके में कोई फर्क पड़ता है?
कि जो अंदरूनी खींचतान होती है उससे थोड़ा हटकर ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं।
ठीक है।
और दूसरा, उन्होंने दशकों तक अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति को बहुत गहराई से पढ़ा है। उनकी दूसरी किताबें भी हैं, जैसे मॉर्निंग इन अमेरिका, द एज ऑफ क्लिंटन, वो भी काफी चर्चित रही हैं।
अच्छा।
वो रेगन को सिर्फ हीरो या विलेन की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फिगर की तरह पेश करती हैं। उनका फोकस इस बात पर रहता है कि रेगन का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी बात कहने का स्टाइल, उनकी सोच, वो उस समय के माहौल के साथ कैसे जुड़ी और उसे कैसे बदला।
और ये कि रेगन खुद को किस भूमिका में देखते थे, एक नेता के तौर पे?
हाँ बिल्कुल। कि उनका लक्ष्य क्या था, वो अमेरिका को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, ये किताब इसी चीज पर रोशनी डालती है।
यानी एक बैलेंस्ड और गहराई वाला नजरिया मिलता है हमें।
अच्छा, अब आते हैं किताब पर, द रीगन रेवोल्यूशन। ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, क्रांति। किताब का मेन तर्क क्या है?
देखिए, किताब का सबसे बड़ा तर्क यही है कि रीगन की अध्यक्षता सिर्फ एक सफल कार्यकाल नहीं थी, ये एक बुनियादी, एक फंडामेंटल और टिकाऊ बदलाव था अमेरिकी राजनीति में, अर्थव्यवस्था में और संस्कृति में भी।
एक क्रांति।
हाँ, ट्रॉय यही कहते हैं कि रीगन ने एक तरह से क्रांति ला दी। उन्होंने उस पुरानी व्यवस्था को पलट दिया जो करीब 50 सालों से चली आ रही थी, जिसे न्यू डील सहमति कहते हैं।
अच्छा, जिसमें सरकार की भूमिका काफी बड़ी मानी जाती थी।
बिल्कुल। समाज में, अर्थव्यवस्था में, रीगन ने उससे खत्म करके एक नए रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव ढांचे की नींव रखी और उसका असर आज भी दिखता है।
तो ये सिर्फ नीतियां बदलने की बात नहीं थी, ये तो सोचने का तरीका, सरकार की भूमिका क्या हो उसकी परिभाषा ही बदल दी गई।
हाँ, किताब ये कैसे समझाती है कि रीगन, जिन्हें कई लोग पहले सिर्फ एक हॉलीवुड एक्टर समझते थे, वो इतना बड़ा बदलाव कैसे ला पाए? ये तो बड़ा सवाल है।
यही किताब का सेंट्रल क्वेश्चन है। ट्रॉय सिर्फ रीगन की नीतियों को नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि लोग उनसे क्यों जुड़े, उनकी अपील का सोर्स क्या था, उनकी नीतियां कैसे काम करती थीं, और उनके कामों के दूरगामी नतीजे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हुए।
और ये कि क्या ये सिर्फ रीगन ने अकेले किया?
नहीं, किताब ये भी कहती है कि ये क्रांति सिर्फ रीगन की देन नहीं थी।
हाँ।
बल्कि ये दशकों से जो एक कंजर्वेटिव आंदोलन बन रहा था ना, ये उसका नतीजा भी थी और उसको तेज करने वाली चिंगारी भी। इसमें एक तरफ तो आम लोगों को लुभाने वाली अपील थी।
हाँ, वो उनका अंदाज था।
और दूसरी तरफ सोची समझी नीतियां लागू करने की रणनीति भी थी।
और इसमें रीगन की अपनी भूमिका, उनके अपने लक्ष्य क्या थे?
देखिए, रीगन की एक खास काबिलियत थी, वो मुश्किल और शायद थोड़ी बोरिंग लगने वाली जो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती है ना, उनको बड़े सरल, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और लुभावने संदेशों में बदल देते थे। और ये संदेश आम अमेरिकियों को मतलब सीधे छूते थे।
उनका लक्ष्य क्या था, साफ था?
हाँ, लक्ष्य काफी साफ था। सरकार का साइज और दखल कम करना, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद और फ्री मार्केट को बढ़ावा देना, और दुनिया में अमेरिका की ताकत को फिर से स्थापित करना। वो खुद को इसी बदलाव के मतलब एक एजेंट के तौर पर देखते थे। किताब इसी पूरी प्रक्रिया को देखती है, उनकी सोच, उनकी रणनीति और उनका असर।
चलिए आप जरा और गहराई में चलते हैं, किताब के अलग अलग हिस्सों पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जब रीगन का उदय हो रहा था। 1970 का दशक कैसा था अमेरिका के लिए?
1970 का दशक अमेरिका के लिए काफी मुश्किलों भरा था, बहुत ज्यादा। उसे अक्सर अस्वस्थता का युग या एज ऑफ मलेस कहा जाता है।
अच्छा, मलेस।
हाँ, मतलब एक तरह की उदासी, एक बेचैनी छाई हुई थी देश में। अर्थव्यवस्था एक अजीब सी मुसीबत में फंसी थी, जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
स्टैगफ्लेशन
ये क्या था? मतलब महंगाई भी बहुत ज्यादा थी और साथ में बेरोजगारी भी, दोनों एक साथ
जी।
ये बहुत बुरी स्थिति थी।
हो,
ऊपर से तेल का संकट था, वियतनाम युद्ध की कड़वी यादें थीं, और ईरान में अमेरिकी दूतावास के लोगों को बंधक बना लिया गया था। इन सब ने मिलकर अमेरिकी आत्मविश्वास को मतलब बुरी तरह हिला दिया था। माहौल काफी निराशाजनक था।
ऐसे में तो लोग उम्मीद ढूंढते हैं। क्या यहीं पर रीगन के लिए एक मौका बना? उन्होंने खुद को इस सिचुएशन के जवाब के तौर पर कैसे पेश किया?
बिल्कुल बिल्कुल, रीगन का अपना सफर भी काफी दिलचस्प है। वो शुरू में डेमोक्रेट थे, पता है?
अरे हाँ
हाँ, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच कंजर्वेटिव होती गई। हॉलीवुड में एक्टर रहे थे, तो कैमरे के सामने बोलना, लोगों से जुड़ना, ये सब तो उन्हें खूब आता था।
हाँ, वो तो था।
फिर उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए काम किया एक प्रवक्ता के तौर पर। वहां उन्होंने फ्री एंटरप्राइज, मुक्त व्यापार, अमेरिकी उद्योग, इन सब की तारीफ में भाषण दिए।
अच्छा।
और फिर वो कैलिफोर्निया की गवर्नर बने। ये उनके लिए एक तरह की प्रयोगशाला थी। यहाँ उन्हें अपनी नीतियों को आजमाने का मौका मिला और उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर समझौते करने पड़ते हैं।
मतलब प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है।
हाँ, उनका लक्ष्य तब तक साफ हो चुका था, कंजर्वेटिव विचारों को देश की मुख्य धारा में लाना।
और उन्होंने अलग अलग जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे उनको एकजुट करने में भी रोल निभाया। ये उनके बड़े लक्ष्य का हिस्सा था क्या?
हाँ, ये बहुत जरूरी था उनके लिए, क्योंकि 1970 के दशक में कंजर्वेटिव आंदोलन कई हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ लोग थे जो आर्थिक मामलों पर जोर देते थे, कुछ सामाजिक मुद्दों पर, कुछ विदेश नीति पर सख्त रवैया चाहते थे।
अच्छा, अलग अलग फोकस।
हाँ, रीगन ने इन सबको एक मंच पर लाने में काफी अहम भूमिका निभाई। 1976 में वो राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन पाने में नाकाम रहे थे रिपब्लिकन पार्टी से।
हाँ, वो मैंने पढ़ा था।
लेकिन उस कोशिश ने उन्हें एक नेशनल पहचान दे दी। उनका लक्ष्य साफ था, इस बिखरे हुए आंदोलन को एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनाना जो चुनाव जीत सके और देश की दिशा बदल सके।
और फिर आया 1980 का चुनाव, जिसने वाकई कहते हैं सब कुछ बदल दिया।
हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। रीगन ने उस समय के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उनको भारी अंतर से हराया। और ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये उस पुरानी उदारवादी सोच, वो जो न्यू डील सहमति थी ना, हाँ, उसको एक तरह से सीधी चुनौती थी।
उनका संदेश क्या था उस समय?
उनका संदेश बहुत आशावादी और सीधा था। उन्होंने लोगों से पूछा, बहुत मशहूर सवाल है, क्या आप 4 साल पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं?
सीधा सवाल।
हाँ, और उन्होंने एक नया वोटिंग ब्लॉक बनाया। इसमें पारंपरिक रिपब्लिकन तो थे ही, साथ में वो डेमोक्रेट वोटर भी आ गए जो सामाजिक मुद्दों पर कंजर्वेटिव थे। उन्हें रीगन डेमोक्रेट्स कहा गया। और जो ईसाई धार्मिक अधिकार समूह भर रहे थे वो भी शामिल हो गए।
एक नया गठबंधन।
बिल्कुल, उनका लक्ष्य था सत्ता में आकर अपनी क्रांतिकारी नीतियों को लागू करना, और 1980 में उन्हें ये मौका मिल गया।
ठीक है, तो सत्ता में आने के बाद उनकी पहली बड़ी पहल थी अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसे रीगनॉमिक्स कहा गया। ये क्या थी और इसका लक्ष्य क्या था?
रीगनॉमिक्स उनकी आर्थिक क्रांति का समझिए दिल थी। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के सिद्धांत पर आधारित थी।
सप्लाई साइड मतलब?
मतलब मूल विचार ये था कि अगर आप टैक्स कम करते हैं, खासकर अमीरों और कंपनियों पर, और उद्योगों पर जो सरकारी नियम कानून है, रेगुलेशन, उनको ढीला करते हैं,
हाँ,
तो इससे निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। और इसका फायदा उनका मानना था धीरे धीरे रिस्क कर मतलब ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक, आम लोगों तक भी पहुंचेगा।
अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी।
हाँ, साथ ही उन्होंने सरकारी खर्च, खासकर जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, उनमें कटौती करने की भी कोशिश की। लक्ष्य साफ था, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम करना।
तो क्या ये लक्ष्य पूरा हुआ? मतलब क्या रिगनॉमिक्स कामयाब रही?
देखिए, इसके नतीजे मिले जुले रहे हैं और इस पर आज भी बहस होती है। एक तरफ तो ये सच है कि 1980 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी आई, महंगाई दर काफी नीचे आ गई, बेरोजगारी भी कम हुई।
ये तो अच्छा हुआ।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्ज वो आसमान छूने लगा और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी, इनकम इनइक्वालिटी, वो काफी बढ़ गई।
ओहो,
तो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का लक्ष्य तो कुछ हद तक मिला, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और उसके फायदे सबको बराबर नहीं मिले।
ठीक है, आपने अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन रेगन का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं था, विदेश नीति में उनका क्या नजरिया था, उनका लक्ष्य क्या था?
हाँ, विदेश नीति में उनका मंत्र था शांति के माध्यम से शक्ति, पीस थ्रू स्ट्रेंथ।
पीस थ्रू स्ट्रेंथ।
हाँ, शीत युद्ध उस समय अपने चरम पर था और रीगन ने सोवियत संघ के प्रति बहुत सख्त, बहुत हार्डलाइन रवैया अपनाया। उन्होंने तो सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य यानी ईविल एम्पायर तक कह डाला था।
हाँ, ये काफी मशहूर हुआ था।
और जो पिछले दशक की देतांत की नीति थी, मतलब तनाव कम करने की कोशिश, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उनका मानना था कि अमेरिका को अपनी मिलिट्री ताकत बहुत बढ़ानी होगी।
अच्छा,
उन्होंने डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी की। SDI यानी स्टार वॉर्स नाम की एक बहुत महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रस्ताव रखा।
हाँ, स्टार वॉर्स।
हाँ, और दुनिया भर में जहां भी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतें थीं, उन्हें मदद देने की नीति अपनाई। इसे रीगन सिद्धांत कहा गया।
तो लक्ष्य क्या था इस सबका?
लक्ष्य साफ था, सोवियत संघ पर इतना दबाव बनाना कि वो या तो बदल जाए या फिर बिखर जाए। वो खुद को शीत युद्ध जीतने वाले नेता की भूमिका में देख रहे थे।
और फिर आया 1984 का चुनाव, जिसे मॉर्निंग इन अमेरिका का नाम दिया गया।
हाँ,
ये उनकी लोकप्रियता का मतलब पीक था।
बिल्कुल, 1984 का चुनाव रेगन की पॉपुलैरिटी की बुलंदी का सिंबल था। मॉर्निंग इन अमेरिका उनका चुनावी नारा था, जो ये दिखा रहा था कि देश में जो निराशा का माहौल था वो खत्म हो गया है और एक नई सुबह हुई है। अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, लोगों में कॉन्फिडेंस लौट रहा था और विदेश नीति में अमेरिका फिर से मजबूत दिख रहा था।
रीगन ने 50 में से 49 राज्यों में जीत हासिल की।
अरे वाह,
49।
हाँ, ये एक जबरदस्त, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। ये एक तरह से उनकी नीतियों और उनके नेतृत्व, उनकी भूमिका पर जनता की मोहर थी। ऐसा लगा कि उनका क्रांति का लक्ष्य पूरा हो रहा है।
लेकिन इतिहास कभी मतलब सीधी रेखा में नहीं चलता। क्या उनके दूसरे कार्यकाल में कुछ मुश्किलें या कॉम्प्लिकेशंस भी आईं? क्या उन्हें अपनी भूमिका या रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ा?
हाँ बिल्कुल, ऐसा हमेशा होता है। एक बहुत बड़ा और शायद मतलब अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया सोवियत संघ के नए नेता मिखाइल गॉर्बचेव के साथ, उनके रिश्तों में।
हाँ, गॉर्बचेव।
शुरुआत में जो रेगन इतने सख्त थे, उन्होंने बाद में गॉर्बचेव के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया। ये बड़ा दिलचस्प है। पहले उन्होंने अमेरिका को सैन्य रूप से मजबूत किया, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ वाली बात।
हाँ हाँ
और फिर जब वो ताकत की स्थिति में आ गए तो उन्होंने बातचीत शुरू की। और गॉर्बचेव खुद भी सोवियत संघ में सुधार लाना चाहते थे, वो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका।
हाँ हाँ हाँ
तो इससे बातचीत का माहौल बना। दोनों नेताओं के बीच कई शिखर बैठकें हुई और 1987 में एक ऐतिहासिक संधि हुई, INF ट्रीटी, जिसने पहली बार जमीन से छोड़ी जाने वाली मध्यम दूरी की पूरी परमाणु मिसाइलों को खत्म किया।
ये तो बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, तो यहाँ रेगन ने अपनी भूमिका बदली, एक सख्त योद्धा से एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक वार्ताकार की।
ये तो एक सकारात्मक पहलू हुआ, लेकिन क्या कोई स्कैंडल या चुनौतियां भी थीं जिनसे उनकी छवि पर या उनके लक्ष्यों पर सवाल उठे?
हाँ, ईरान कॉन्ट्रा मामला उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा दाग माना जाता है।
ईरान कॉन्ट्रा, ये क्या था?
उड़ाया जा सके।
ओह,
और उससे जो पैसा मिला उसे गैर कानूनी तरीके से निकारागुआ में लड़ रहे कॉन्ट्रा विद्रोहियों को भेज दिया गया। ये अमेरिकी कानूनों का खुला उल्लंघन था और इससे रीगन की ईमानदारी और उनके प्रशासन की पारदर्शिता पर मतलब गंभीर सवाल उठे।
ये तो बड़ा स्कैंडल था।
हाँ, इसके अलावा उस समय एड्स का संकट फैल रहा था, उस पर धीमी प्रतिक्रिया के लिए भी उनकी आलोचना हुई। पर्यावरण से जुड़ी उनकी कुछ नीतियों पर भी सवाल उठे और बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज तो एक चिंता का विषय था ही। इन सब ने राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका और उनके फैसलों पर बहस खड़ी की।
और राजनीति और नीतियों से हटकर रीगन का कल्चरल असर कैसा रहा? क्या उन्होंने समाज की सोच या मूल्यों को भी बदला?
ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। रेगन सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक कल्चरल आइकॉन भी बन गए थे।
कल्चरल आइकॉन?
हाँ, उन्होंने न्यू राइट और क्रिश्चियन राइट जैसे जो सामाजिक रूप से कंजर्वेटिव आंदोलन थे, उनको काफी बढ़ावा दिया। उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में जगह दिलाई।
अच्छा।
गर्भपात, स्कूलों में प्रार्थना जैसे मुद्दे, जिन्हें कल्चर वॉर्स या संस्कृति युद्ध कहा जाता है, वो राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव जजों की नियुक्ति की, जिसका असर आज तक महसूस होता है।
हाँ, जजों की नियुक्ति का असर तो लंबा रहता है।
बिल्कुल। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका में सांस्कृतिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और गहरा हो गया। उन्होंने निश्चित रूप से कंजर्वेटिज्म की भूमिका को अमेरिकी समाज में बदल दिया।
तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो गिलफ्रॉय की किताब के मुताबिक रेगन की स्थायी विरासत, उनकी लेगेसी क्या है? क्या वो अपने लक्ष्यों में कामयाब रहे?
ट्रॉय का निष्कर्ष यही है कि रेगन की विरासत बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, मिलीजुली है। एक तरफ उन्होंने अमेरिकी राजनीति की पूरी बहस का मुद्दा ही बदल दिया। मतलब सरकार की भूमिका क्या हो, टैक्स रेगुलेशन, इन सब पर सोचने का तरीका ही बदल गया। जिसका असर बाद के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों पर भी पड़ा। शीत युद्ध को खत्म करने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनके दौर में सरकारी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ा, आर्थिक असमानता बढ़ी और राजनीतिक कड़वाहट और ध्रुवीकरण भी गहरा हुआ। तो हाँ, उनका लक्ष्य अमेरिका को बदलना था और वो इसमें काफी हद तक सफल रहे, लेकिन उस बदलाव की एक कीमत भी थी और उसके कई अनचाहे नतीजे भी निकले।
वाकई एक बहुत बड़ा और मतलब कई परतों वाला बदलाव। चलिए अब इस किताब से निकलने वाले कुछ मुख्य विषयों या संदेशों को समेटते हैं। पहला शायद ये है कि एक आशावादी, एक ऑप्टिमिस्टिक भविष्य की ओर देखने वाले रूढ़िवाद में कितनी ताकत हो सकती है।
बिल्कुल। रीगन ने दिखाया है कि कंजर्वेटिव होना सिर्फ पुरानी चीजों से चिपके रहना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव नजरिया पेश करना भी हो सकता है। उनका वो मॉर्निंग इन अमेरिका वाला संदेश इसी का प्रतीक था। उन्होंने रूढ़िवाद को निराशा से निकालकर उम्मीद से जोड़ा। ये उनकी एक खास भूमिका थी एक आशावादी नेता की।
दूसरा अहम विषय लगता है गठबंधन बनाने की कला, मतलब अलग अलग सोच वाले लोगों को एक साथ लाना।
हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ा जिनकी प्रायोरिटीज अलग अलग थीं। कोई टैक्स कम चाहता था, कोई सामाजिक मूल्यों पर जोर देता था, कोई सख्त विदेश नीति चाहता था।
हाँ, ये तो मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल। रीगन ने इन सबको एक झंडे तले लाने का काम कर दिखाया। ये उनके लक्ष्य का हिस्सा था, एक बड़ा व्यापक कंजर्वेटिव गठबंधन बनाना और उसे बनाए रखना। इसमें थोड़ी मतलब स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, रणनीतिक अस्पष्टता भी काम आई। ऐसे संदेश देना जिन्हें अलग अलग लोग अपने हिसाब से समझ सकें।
और जाहिर है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी मीडिया मास्टरी।
हाँ, उन्हें ग्रेट कम्युनिकेटर कहा ही जाता था। उनके हॉलीवुड की पृष्ठभूमि इसमें बहुत काम आई। वो जानते थे कि अपनी बात कैसे कहनी है, कैसे दिखना है, कैसे लोगों से एक इमोशनल कनेक्ट बनाना है। उन्होंने टीवी का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि आज की राजनीति में भी संदेश देना और लोगों से जुड़ना कितना जरूरी है। ये उनकी भूमिका का एक सेंट्रल हिस्सा था।
एक और बात उभर कर आती है, अपनी विचारधारा पर टिके रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर प्रैक्टिकल होना।
हाँ, वो अपने मूल सिद्धांतों से, अपने कोर प्रिंसिपल से नहीं हटे, जैसे सरकार को सीमित करना या कम्युनिज्म का विरोध करना। लेकिन अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो रणनीति बदलने या समझौते करने को भी तैयार थे, जैसा हमने गोर्बाचेव के साथ बातचीत में देखा।
सही।
वो कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल रेवोल्यूशनरी थे। उनका लक्ष्य बड़ा था और उसे पाने के लिए वो रास्ते बदलने को तैयार थे।
और शायद सबसे बुनियादी बदलाव था वो न्यू डील वाली सोच को खारिज करना।
हाँ, ये उनकी क्रांति का आधार था। उन्होंने सीधे सीधे ये विचार पेश किया कि सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि अक्सर खुद ही समस्या का हिस्सा होती है।
गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम।
बिल्कुल। इस एक विचार ने अमेरिकी राजनीति पर दशकों तक गहरा असर डाला है और सरकार की भूमिका को लेकर जो बहस चली आ रही थी उसको पलट दिया। उनका ये लक्ष्य, सरकार की भूमिका को रीडिफाइन करना, काफी हद तक पूरा हुआ।
किताब में जरूर कुछ यादगार बातें या कोट्स होंगे जो रीगन की सोच या उनके अंदाज को दिखाते हैं। एक तो आपने बताया सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं है, सरकार ही समस्या है।
हाँ, ये उनके पहले उद्घाटन भाषण का हिस्सा था और उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। ये सीधे तौर पर उनके लक्ष्य को बयान करता था।
एक और मशहूर जुमला है सोवियत संघ के बारे में, विश्वास करो लेकिन पुष्टि करो, ट्रस्ट बट वेरीफाई।
चीज की जांच पड़ताल करो, ये ताकत और कूटनीति के मेल को दिखाता है जो उनके शीत युद्ध जीतने के लक्ष्य के लिए जरूरी था।
और 1980s की बहस में वो सवाल, क्या आप 4 साल पहले से बेहतर हैं?
ये सीधे वोटर्स के अनुभव पर चोट करने वाला सवाल था, बहुत ही असरदार। इसने दिखाया कि वो अपनी भूमिका को आम आदमी की आवाज के तौर पर देखते थे जो मौजूदा सरकार से जवाब मांग रहा है।
अमेरिका में फिर से सुबह है, मॉर्निंग अगेन इन अमेरिका।
ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक फीलिंग थी, एक भावना थी जिसे रीगन जगाना चाहते थे। आशावाद, नेशनल प्राइड की वापसी, ये उनके सकारात्मक संदेश देने वाले लक्ष्य का प्रतीक था।
एक और उनकी मजाकिया टिप्पणी थी, सरकार की तरफ से 9 सबसे डरावने शब्द हैं, मैं सरकार से हूँ और मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ।
हाँ, ये उनके अंदाज को दिखाता है, नौकरशाही पर सटायर, व्यंग और अपनी बात को हल्के फुल्के तरीके से कहने की कला। इससे वो लोगों से जुड़ पाते थे और अपने सरकार विरोधी लक्ष्य को और पुख्ता करते थे।
इन सब बातों से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ अमेरिकी इतिहास की बातें हैं या इनका कोई मतलब बड़ा महत्व भी है?
नहीं, मुझे लगता है कई सबक हैं। पहला तो लीडरशिप में कहानी कहने की ताकत, स्टोरी टेलिंग की पावर। रीगन ने दिखाया कि कैसे एक सरल, लगातार दोहराई जाने वाली और इमोशनली कनेक्ट करने वाली कहानी लोगों को इंस्पायर कर सकती है और बदलाव ला सकती है। किसी भी नेता के लिए, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो या समाज में, ये जरूरी है कि वो अपने भूमिका को सिर्फ एक मैनेजर की तरह ना देखें, बल्कि एक विजन देने वाले स्टोरी टेलर की तरह भी देखें।
और आज जो हम दुनिया भर में और भारत में भी ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखते हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, क्या उसे समझने में रीगन का दौर मदद करता है?
हाँ, काफी हद तक। रीगन ने जिस तरह का गठबंधन बनाया और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसने कुछ ऐसी दरारें पैदा की या उन्हें गहरा किया जो आज भी मौजूद हैं।
अच्छा,
ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए बनाए गए गठबंधन या उठाए गए मुद्दे लंबे समय तक समाज को बांट सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि नेताओं के लक्ष्यों के अनपेक्षित, अनइंटेंडेड परिणाम भी हो सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में क्या सीख मिलती है?
वो विश्वास लेकिन पुष्टि करो वाला सिद्धांत आज भी बहुत रेलेवेंट है। चाहे वो देशों के बीच बातचीत हो या कोई बिजनेस डील हो या कोई भी समझौता, अपनी स्थिति मजबूत रखो, बातचीत के लिए तैयार रहो, लेकिन हमेशा सतर्क रहो और फैक्ट्स की जांच करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो लेकिन रणनीति में फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश रखो।
आर्थिक नीतियों के बारे में?
रिगनॉमिक्स का अनुभव हमें सिखाता है कि किसी भी आर्थिक नीति का मूल्यांकन सिर्फ ग्रोथ रेट देखकर नहीं करना चाहिए, उसके सामाजिक परिणाम क्या हैं, उसका असर कर्ज पर, असमानता पर क्या पड़ रहा है, ये सब देखना जरूरी है।
हाँ, पूरी तस्वीर देखना जरूरी है।
बिल्कुल, हर आर्थिक लक्ष्य के साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं।
और शायद ये भी कि सही समय पर सही नेता का होला कितना मायने रखता है।
हाँ बिल्कुल, रीगन 1970 के दशक की उस निराशा के बाद आए थे एक आशावादी संदेश लेकर। शायद किसी और समय में उनकी बातें उतनी असरदार नहीं होती। ये दिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ व्यक्ति की काबिलियत पर ही नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। अपनी भूमिका को समय की मांग के हिसाब से ढालना पड़ता है।
तो अंत में आपके लिए इस किताब और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि कैसे रीगन ने अपनी भूमिका को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिसी मेकर के तौर पर नहीं देखा बल्कि एक आंदोलन के नेता, एक कम्युनिकेटर और अमेरिकी कहानी के एक नए चैप्टर के लेखक के तौर पर देखा। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था बल्कि अमेरिका की सोच को बदलना था, और ट्रॉय की किताब ये दिखाती है कि वो इसमें कितने सफल रहे और कुछ मामलों में असफल भी, और कैसे उनके इस प्रयास ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनकी वैचारिक दृढ़ता, संवाद कला और व्यवहारिक समझ का मतलब मिला जुला नतीजा था।
और मेरे लिए ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने इतने अलग अलग समूहों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया, भले ही वो लक्ष्य मतलब काफी विवादास्पद रहा हो। यह दिखाता है कि लीडरशिप में एक क्लियर विजन और उसे लोगों तक पहुंचाने की कला कितनी जरूरी है। रीगन की कहानी, चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, ये जरूर सिखाती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए एक मजबूत इरादा, व्यापक समर्थन और भविष्य की एक लुभावनी तस्वीर पेश करना जरूरी होता है। और ट्रॉय की किताब का जो बैलेंस नजरिया है वो इसे समझने में बहुत मदद करता है।
सही कहा, ये सिर्फ एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप, बदलाव और एक राष्ट्र की आत्मा को बदलने की कोशिश की कहानी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।